नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। घड़ी में समय हुआ है 8:30 और ये समय होता है खेल जगत की तमाम खबरों को समेट कर लाने का, उन पे चर्चा करने का।
स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार
और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गिरीश बुबना। गिरीश नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
नमस्कार लवली जी, धन्यवाद आपका।
तो गिरीश, आईपीएल में जो आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच है वो बारिश के कारण शुरू नहीं हुआ और जो हालात लग रहे हैं कि जबरदस्त बारिश हो रही है।
बारिश अब थोड़ी सी कम हुई है तो ग्राउंड स्टाफ जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और जो सीन में सबसे आगे नहीं होते, बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, तो उनके लिए एक लंबा प्रयास होगा। ग्राउंड को पहले तो पानी को साफ करें, फिर ग्राउंड सुखाएं और वहां जो तमाम दर्शक जो मैदान में मौजूद हैं और जो लाखों करोड़ों दर्शक जो टीवी और मोबाइल सेट्स पे हैंडसेट्स में वो देख रहे हैं, तो ये मुकाबला काफी अहम है। लवलीन जी, गुजरात टाइटन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, एक को प्रथम चार में बनाने के लिए जगह और एक को नंबर वन की चाह के लिए, ये दो अंक सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर।
तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, पहले सुर्खियां। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बारिश के कारण अभी शुरू नहीं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और किशोर जैना को भुवनेश्वर में 15 मई को होने वाले फेडरेशन कप फाइनल्स में सीधा प्रवेश मिला। भोपाल में मनु भाकर और आदर्श सिंह ने ओलंपिक चयन ट्रायल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल और पुरूषों की इसी स्पर्धा में क्वालिफिकेशन दौर में पहला स्थान हासिल किया। जैसे कि अभी गिरीश हम जिक्र कर रहे थे, आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से आज होना है, लेकिन बारिश के कारण अभी टॉस ही नहीं हो पाया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को मुंबई इंडियंस पर आसान जीत दर्ज की थी और प्लेऑफ में स्थान पक्का कर लिया था, जबकि गुजरात की बात की जाए उन्होंने फ्राइडे को चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था और अगर टैली में देखें तो गुजरात टाइटन्स की टीम 8वें नंबर पर है। कल रात बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराया, उनकी भी प्लेऑफ में की उम्मीदें बरकरार हैं। सबसे पहले कोलकाता की बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स बहुत टाइम तक टॉप पे थी, लेकिन फिर कोलकाता आई, आगे बढ़ी और उसने राजस्थान रॉयल्स को दूसरे स्थान पर धकेल दिया और अब चाहेगी कि मेरा जो पहला स्थान है वो रहे उसको, क्योंकि वहां आगे भी फायदा होता है जब फाइनल्स के लिए हो रहे।
बिल्कुल, आप देखिए तो कोलकाता ने पिछले 4 मुकाबले एक के बाद एक जीते और लगातार जीते और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है जब से गौतम गंभीर जुड़े इस टीम से और लास्ट मोमेंट उन्होंने एलएसजी का साथ छोड़ा, केकेआर से जुड़े और यहां पर एक काफी अनुभवी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की। गौतम गंभीर अब आए, उससे पहले यहां पर जो अन्य इनके कोचिंग दल थे उसमें बहुत ही जो है इनमें मैच्योरिटी दिखती है, तो इस लिहाज से टीम अच्छा कर रही है। पिछले 2 सीजन में टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, 7वें-8वें पोजीशन पे थे, अब ये टॉप पे आज, लेकिन अगर यहां पर मैच एक एक अंक बढ़ जाता है तो 19 पॉइंट भी होंगे, एक मैच हालांकि इनका बचेगा, तो इस लिहाज से ये जो 2 अंक है सर्वोच्च हासिल करने में, हालांकि नंबर 1 नंबर 2 पे तो रहेंगे, उनको एक और चांस मिलेगा अगर वो प्लेऑफ्स में पहला मैच हार जाते हैं तो एक और मौका मिलेगा, लेकिन वो चाहेंगे कि कम से कम लीग स्टेज में नंबर 1 पर अपना नाम दर्ज कराएं
और फिर आराम से। जैसा हम अभी बता रहे थे, कल रात बेंगलुरु में आरसीबी ने हराया दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से, प्लेऑफ में पहुंचने उसकी भी उम्मीदें बरकरार है। आरसीबी अंक तालिका में 12 अंक के साथ 5वें नंबर पर है, दिल्ली कैपिटल्स 6ठे नंबर पर खिसक गया। यानी अगर हम अंक तालिका देखें गिरीश तो बहुत रोमांचक है, केकेआर नंबर 1, आरआर नंबर 2, सीएसके नंबर 3, सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 4 और बहुत सारे पॉइंट्स भी लगभग बराबर हैं, तो मतलब एक जो रस्सा कशी और कशिमकश चल रही है ना, बहुत जबरदस्त है।
एक आरसीबी और सीएसके का जो मैच होना है तो आरसीबी अब एक मैच उनके बचा है, 12 पॉइंट है और वो सीएसके के भी एक मैच बचा है, तो इन दोनों के बीच में जो सदर्न डर्बी होगी वहां पर जो जीतेगा, मतलब कि एक के पास 12 पॉइंट है, सीएसके के पास 14 पॉइंट है, तो इस लिहाज से अब सीएसके भी अब टॉप 4 पे आ गई है और आरसीबी अभी पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है लवलीन जी। उसी तरह से आप देखिए दिल्ली कैपिटल जो कि 13 मैच खेल चुके हैं और 12 पॉइंट है, अभी उनका एलएसजी से मैच बचा हुआ है अपने घर पर, फिर उसी तरह राजस्थान रॉयल्स है, उनके 16 अंक हैं और 2 मैच बचे हैं पंजाब और केकेआर से, तो इस लिहाज से इनके पास भी अभी इनके पास एक एडवांटेज है कि यहां पर 2 मैच है। एसआरएच के पास 14 पॉइंट है, इनके दो मैच इनके पास भी हैं जीटी और पीवीकेएस, तो मुझे लगता है कि जो पंजाब किंग्स हैं या एमआई जो कि बाहर हो चुके हैं वो किसी का अब खेल बिगाड़ सकते हैं, अपना बना तो नहीं सकते
दूसरों के लिए।
हाँ, एलएसजी के पास भी दो मैच हैं दिल्ली कैपिटल्स और एमआई के साथ,
इस पर जिक्र करेंगे, पहले एक रिपोर्ट सुन लेते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे।
बिल्कुल,
फॉर्म से जूझ रही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें बनाए रखने के लिए मैदान पर उतरेगी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की नॉकआउट में जगह बनाने की उम्मीदें बहुत कम हैं। सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल की सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 10 विकेट की हार के बाद आलोचना हो रही है। राहुल अच्छी फॉर्म में नहीं है और भारत की टी20 विश्व कप टीम में भी जगह नहीं बना पाए हैं। लखनऊ की टीम 12 अंक के साथ 7वें स्थान पर है और दिल्ली तथा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ शीर्ष 4 से बाहर है। टीम को अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए 5 दिन का समय मिला है। राहुल के अलावा क्विंटन डीकॉक की खराब फॉर्म के कारण भी सुपर जायंट्स को मौजूदा सत्र में पावर प्ले में जूझना पड़ा है। टीम को तेज गेंदबाज मयंक यादव के चोटिल होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यश ठाकुर और नवीन उल हक उनकी कमी को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। मोहसिन खान भी चोट के कारण पिछले मैच में नहीं खेले थे। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को एक मैच के निलंबन के बाद कप्तान ऋषभ पंत की वापसी से मजबूती मिलेगी। टीम को सुपर जायंट्स के खिलाफ फील्डिंग में सुधार करना होगा, क्योंकि टीम ने आरसीबी के खिलाफ कई कैच छोड़े थे। दिल्ली ने हालांकि मौजूदा सत्र में 4 बार 200 से अधिक रन बनाए हैं और टीम को यह प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद होगी, जिससे कि प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रख सके। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन।
तो देखा, जैसे अभिषेक के रिपोर्ट है, अभी हम अभी जिक्र कर ही रहे थे कि अंक तालिका पूरी तरह से खुली हुई। लखनऊ के लिए यह मैच बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। दिल्ली तो जैसे कहते, कुछ टीमें तो अब खेल बिगाड़ने के लिए भी खेलेंगी।
तो एलएसजी का जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, उनके पास दो मुकाबले बचे हुए हैं अभी तक, वो पूरी तरह से बाहर नहीं है। अभी ये देखिए कि दो टीम सर्वोच्च स्थान पे आने के बाद भी जो बाकी 4 टीम, इनके बीच में संघर्ष हो सकता है, तो उसमें एलएसजी भी एक है, जिसका एक मुकाबला दिल्ली कैपिटल से और एक एमआई से बचा हुआ है। तो इन दोनों टीम के खिलाफ ये टीम वापस आ सकती है। केएल राहुल की अगुवाई में खेल रहे हैं, हालांकि जो पिछला मैच इन्होंने हारा 10 विकेट से, वहां पर उसके बाद टीम में काफी खलबली मची। जो टीम के ऑनर है संजीव गोयनका,
राकेश राहुल की काफी आलोचना भी
हुई। केएल राहुल की वो सार्वजनिक तौर पर कैमरा के सामने उनके बीच में लग रहा था, और जो क्रिकेट के पंडित है वो कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जब कोई ऑनर एक जब टीम खरीदता है और वो 2000 करोड़ का डिफरेंस हो दूसरी टीम से, तो स्वाभाविक है, तो उनका गुस्सा कई बार क्या होता है कि मैदान के सामने आ जाता है।
अगर आप देखिए, खेल तो खेल है,
आप बिल्कुल इस आईपीएल में देखें तो दिल्ली कैपिटल्स के जो मालिक हैं पार्थ जिंदल, उन्होंने भी काफी मतलब जो सेलिब्रेशन किया, उस टाइप का सेलिब्रेशन कई लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। और उस तरह एमआई है, हालांकि उन्होंने कैमरास के सामने नहीं किया, लेकिन जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, लीग स्टार्ट होने से पहले हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया और रोहित शर्मा को हटाया, तो मुझे लगता है कि
बहुत शोर मचा।
तो मुझे लगता है मनोबल वहां से एमआई का गिरने लगा। तो इस लिहाज से अब तो ये कैमरा के सामने, मेरा ये कहना था लवलीन जी कि आप कैमरा के सामने करें या कैमरा के बाहर, लेकिन न्यूज तो आ ही जाती है, और न्यूज आने के बाद खिलाड़ियों का जो मनोबल बना के रखना,
यूनिटी भी वो होती है और मनोबल पर भी।
तो इस लिहाज से जो चैंपियन टीम है वो नीचे आ गई, आप देखें।
अब रैकेट की दुनिया की ओर हम रुख करते हैं। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने इटली के फ्रांसिस्को पासारो मुच्चियो अर्नाल्डो की जोड़ी को 6-2 से हराया। अब खेलेंगे ये सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासुरी से प्री क्वार्टर फाइनल में। रोहन बोपन्ना एक हमारे ऐसे खिलाड़ी जिन पे काफी हद तक हम निर्भर हैं और लिए जा रहे हैं भारत के ध्वज को।
43 साल के रोहन बोपन्ना ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो ग्रैंड स्लैम होता है वो अपने ऑस्ट्रेलियन जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ उन्होंने पहली बार एक ग्रैंड स्लैम डबल्स में जीता, और उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद मियामी भी जीता यहां पर, लेकिन पिछले जो दो इनके जो टूर्नामेंट हुए वहां पर जो अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ इस वजह से इनकी रैंकिंग भी गिरी। लेकिन अब जो इनका मुकाबला होगा वो उन्हीं खिलाड़ियों से होगा जिन्होंने इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हराया था, और इस लिहाज से माना जा रहा है कि पलड़ा इनका भारी है। और पहला भी जो मैच इनका मैच हुआ वो 6-2 से जीता, एक तरफा हुआ, तो पिछले दो मुकाबले में पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी ये जोड़ी, तो इस लिहाज से कम अब मनोबल बढ़ा होगा इनका।
बैंकॉक में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी कल से शुरू हो रहे थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। अंकुर की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
सात्विक और चिराग की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत नूर मोहम्मद अजरीन अयूब अजरीन और टेन वी कियोंग की मलेशिया की जोड़ी के खिलाफ करेगी। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक की दावेदार भारत की इस जोड़ी को थॉमस कप में इंडोनेशिया और चीन के खिलाड़ियों की सर्विस का सामना करने में थोड़ी मुश्किल हुई थी। विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणय को मौजूदा सत्र में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद लय हासिल करनी होगी। किरण जार्ज और सतीश कुमार करुणाकर भी सिंगल्स में चुनौती पेश कर रहे हैं, जबकि लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु पिछले हफ्ते टूर्नामेंट के ड्रा की घोषणा से पहले प्रतियोगिता से हट गए। सिंधु की गैर मौजूदगी में महिला सिंगल्स में भारत की नजरें अस्मिता चालिहा, मालविका बसोड़ और आकर्षि कश्यप पर रहेंगी। अस्मिता को पहले दौर में इंडोनेशिया की ईस्टर नुरूमी त्रिवार्डोयो से मुकाबला करना होगा, जबकि मालविका को चीन की शीर्ष वरीय हेन यूई से खेलना है। आकर्षि का सामना पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंग बैंग रुंगफान से होगा। महिला युगल में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी तनीषा क्रिस्टोफ और अश्विनी पोनप्पा की चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली है।
तो देखा जाए कल से जो शुरू हो रहा है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी पे ज्यादा नजरें रहेंगी, या क्योंकि अब पीवी सिंधु हट गई हैं तो जो नई खिलाड़ी अश्मिता वगैरह आ रही हैं उनसे भी हम देख रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
बिल्कुल, बीडब्ल्यूएफ टूर्नामेंट एक महीने के विराम के बाद वापस आया क्योंकि थॉमस और उबर कप बीच में चल रहे थे, तो थाईलैंड ओपन जो है सुपर 500 टूर्नामेंट है और जो बड़े नाम है पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में नहीं है, लेकिन एचएस प्रणय जो वहां पर उनका दबदबा होगा उसी सात्विक साई रंकी रेड्डी सात्विक साई और चिराग शेट्टी की जोड़ी है वो यहां पर पेरिस ओलंपिक से पहले जो भी अपनी खामियां होगी उसको दूर करने के लिए वो संघर्ष करेंगे। जैसे आप बात कर रही थी और दूसरी खिलाड़ी की महिला खिलाड़ी की उसमें मालविका बंसोर है, अस्मिता चरिया है, फिर उसके बाद इमाद फारूकी, आकर्षि कश्यप और उन्नति हुडा, इन सबकी जो है वो एकल में ये चुनौती देंगे और मेन्स में एच एस प्रणय, किरण जॉर्ज, सतीश कुमार ये जो है वो वहां पर होंगे।
भोपाल में मनु भाकर और आदर्श सिंह ने ओलंपिक चयन ट्रायल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल और पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के क्वालिफिकेशन दौर में पहला स्थान हासिल किया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और किशोर जैना को भुवनेश्वर में 15 मई को होने वाले फेडरेशन कप फाइनल्स में सीधे प्रवेश दिया गया है। इन दोनों ने करियर में 75 मीटर का न्यूनतम क्वालिफाइंग स्तर कई बार हासिल किया और जाहिर तौर पर गिरीश देखा जाए बहुत टाइम बाद नीरज चोपड़ा जो है वो घरेलू टूर्नामेंट में खेलेंगे और बहुत लोगों को इंतजार भी होगा।
बिल्कुल, 3 साल बाद मुझे तो लग रहा है कि जो पिछला ओलंपिक हुआ था उसके बाद कोई घरेलू टूर्नामेंट में इन्होंने भाग नहीं लिया, काफी डायमंड लीग खेला फिर और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उस हिसाब से उन्होंने भी आग्रह किया है कि घरेलू समर्थकों के कि वो आए और वहां पर इसका जो है उड़ीसा में भुवनेश्वर में होने वाला है तो उसका जो है ये कम से कम अपने ऑडियंस के सामने तो ये अच्छा लगेगा उनको भी।
जी, और इसके अलावा आगे बढ़े 6 भारतीय पहलवानों द्वारा ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि पेरिस 2024 में कौन सा पहलवान भाग लेगा इसका फैसला महासंघ करेगा, साथ ही नए सिरे से ट्रायल भी होंगे। इस्तांबुल में हाल ही में संपन्न विश्व क्वालिफायर में जो पहलवानों के लिए अंतिम पेरिस ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट था, अमन सहरावत निशा दहिया ने कुश्ती में भारत के कोटा की संख्या बढ़ाकर 6 पहुंचा दी है। और गिरीश यहां पर देखा जाए तो जाहिर तौर पर फेडरेशन बताएगा कि फिर जो हमें 6 कोटा मिली है उनमें कौन कौन से खिलाड़ी। खिलाड़ी जाए।
बिल्कुल, वो संघ का प्रावधान होता है कि वो किसको भेजे, लेकिन थोड़ी निराशा रही कि भारतीय जो हमारे एथलीट है उसमें सिर्फ एक ही मेल है, बाकी 5 फीमेल। जो मुझे अच्छा होता है कि और कोटा मिलते यहां पर थोड़ी निराशा वाली बात ही रही।
चलते चलते एक और खबर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ITTF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुभारंभ हुआ। इसके बारे में और जानकारी नहीं दे पाएंगे आप, हमारे स्टूडियो में आए तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद
लिसनर्स, हम आपसे कल मिलेंगे। फिलहाल शुभ रात्रि।